आकाशवाणी गोरखपुर से क्षत्रिय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की सफल यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज सुबह अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा और अन्य वैश्विक नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये राजकीय यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है।
करीब 57 वर्ष के बाद में भारत के प्रधानमंत्री की ब्राजील में स्टेट विजिट होने वाली है और इस समिट में दोनों लीडर्स राष्ट्रपति लुला और प्रधानमंत्री मोदी जी बैठ करके कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें एक राजनीतिक चर्चा तो होगी, उसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात होगी, रक्षा क्षेत्र की बात होगी, माइनिंग मिनरल्स की बात होगी, क्योंकि ब्राजील के पास में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुतायत है यहाँ पर। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसे कई मुद्दों पर यहाँ पर दोनों लीडर्स के बीच में बात होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के संभल में कल हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। कल देर शाम संभल जिले के मेरठ बदायूं हाईवे पर जूनावई थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी कार के एक स्कूल की दीवार से टकरा जाने से दूल्हा समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्राओं की उम्मीद पूरी करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
प्रदेश सरकार ने बौद्ध व सिख श्रद्धालुओं के लिए 2 तीर्थ यात्रा योजनाएं शुरू की हैं। बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं के लिए बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और सिख श्रद्धालुओं के लिए पंच तप यात्रा योजना प्रारंभ की जाएगी। दोनों ही योजनाओं में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कच्छ से मैं रितेश।
मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में राजस्व संबंधी मामलों की आने वाली शिकायतों की जांच अब लेखपाल नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी शिकायतों की जांच अब नायब तहसीलदारों से कराई जाए। नायब तहसीलदारों की जांच पर उप जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार कर उसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे। पौधरोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत मुख्य आयोजन 9 जुलाई को होगा। सरकार ने इसी दिन 37 करोड़ से अधिक पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोपाल वन की स्थापना भी की जाएगी। गौशाला में छायादार और चारा प्रजाति के पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन के जरिए युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष पहल की जाएगी। युवा कौशल दिवस के मुख्य कार्यक्रम में सफल प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें मंच पर अपनी सफल कहानी साझा करने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर जिले में मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। संयुक्त कृषि निदेशक डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने बताया है कि इस बार 3,625 एकड़ में संकर मक्का की खेती के लिए 240 कुंतल बीज किसानों को 100% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये कार्ययोजना त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई है। आज मुहर्रम की 9वीं तारीख है। इस अवसर पर रात में गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों में हजरत इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि कल 10वीं मुहर्रम पर अंतिम जुलूस और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। इस बीच 9वीं और 10वीं मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर सहित कई शहरों में यातायात व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।